ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। कल होने जा रहे राष्ट्रीय सभा चुनाव की सभी तैयारियां हो चुकी है। निर्वाचन आयोग द्वारा जानकारी। गन्ना किसानों की बकाया रकम भुगतान न करने वाले चीनी मिलों पर सरकार द्वारा कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू। कर्नाली प्रदेश के 5 जिले 3 दिनों से संचार विहीन और ऑस्ट्रेलिया में फिर से भड़की आग। अब समाचार विस्तार से। कल होने जा रहे राष्ट्रीय सभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है, ये जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी है। आज निर्वाचन आयोग में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थापलिया ने ये बात बताई। उन्होंने बताया कि सभी 7 प्रदेशों के उन जिला मुख्यालयों में जहां जहां उच्च अदालत स्थित है वहां वहां मतदान केंद्र बनाए जा चुके हैं। आगे उन्होंने बताया कि कल सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक मतदान होगा और मतदान पूरा होते ही मतगणना शुरू कर कल देर सवेर सभी परिणाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे और इसके लिए निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश किया जा चुका है। कुल 18 राष्ट्रीय सभा सदस्य पदों के लिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल, राष्ट्रीय जनमोर्चा और मजदूर किसान पार्टी समेत कुल 6 राजनीतिक पार्टियों से 45 उम्मीदवार चुनावी प्रतिस्पर्धा में खड़े हैं। राष्ट्रीय सभा की प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति ने अपने निर्देशों का क्रियान्वयन न करने वाले विभिन्न मंत्रालयों से तगादा करने का निर्णय किया है। समिति की आज की बैठक ने इस बात के जिक्र के साथ कि बार बार निर्देश करने के बावजूद क्रियान्वयन नहीं किया गया है और इसके बारे में जवाब मांगने पर भी आनाकानी हुई है, विभिन्न मंत्रालयों से तगादा करने का फैसला लिया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बासकोटा ने मंत्रालय मातहत के निकायों को स्वीकृति कार्यक्रमों को माघ मसान तक में प्रक्रिया में ले जाने का निर्देश किया है। आज संचार मंत्रालय में बुलाई गई मंत्रालय और मंत्रालय संबद्ध निकायों के वार्षिक बजट पर समीक्षा बैठक में मंत्री बासकोटा ने कहा कि स्वीकृत बजट व कार्यक्रमों की परियोजनाओं की प्रक्रिया माघ मसान तक में अगर शुरू नहीं की गई तो रकम वापस करने के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवंटित बजट को मनमाने तौर पर खर्च न करने का निर्देश भी किया। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत कुमार नेमवांग ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय गौरव वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कंचनपुर द्वारा आज महेन्द्रनगर में आयोजित कार्यकर्ता भेंटघाट कार्यक्रम में मंत्री नेमवांग ने दावा किया कि भौतिक पूर्वाधार के काम तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि कंचनपुर जिले की सभी पालिकाओं को सड़क संजाल से जोड़ने के लिए 16 तराई मधेश पूर्वाधार सड़कों का निर्माण हो रहा है। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा कुमारी अर्याल ने कहा कि अतिक्रमित जमीन लौटाने के अभियान में सरकार दृढ़ संकल्प के साथ लगी हुई है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा तनहु द्वारा आज आयोजित कार्यक्रम में मंत्री अर्याल ने कहा कि सरकारी जमीन व्यक्ति के नाम में दर्ज करने वाले के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जमीन को अधिक उत्पादनमूलक बनाने के लिए सरकार ने भू उपयोग नीति बनाई है। ये बताते हुए उन्होंने जमीन उत्पादनमूलक कामों के लिए जमीन का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल ने कहा कि अगर दवा खरीद प्रक्रिया में कहीं भी किसी प्रकार का अपचलन हो रहा है तो उस पर संघीय सरकार नियंत्रण करेगी। कंचनपुर के भीमदत्त नगर में महाकाली अस्पताल व्यवस्थापन समिति द्वारा आज आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ढकाल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देशभर के 52,000 महिला स्वास्थ्य सेविकाओं के लिए मंत्रालय नया योजना लाने की तैयारी में है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब वक्त है व्यापारिक विश्राम का।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसी को डे प्याक लिन *1415 हास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री पार्वत गुरूंग ने कहा कि अंधविश्वास और कुरीति के रूप में रहे छाऊ प्रथा का अंत सरकार किसी भी हालत में करके ही रहेगी। छाऊ प्रथा की अवस्था का अनुगमन करने के लिए करनाली पहुंचे मंत्री गुरूंग ने कहा कि छाऊ घर को नष्ट करना काफी नहीं है, जब तक मानसिकता में बन चुके छाऊ घर को नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक इस प्रथा का अंत नहीं हो सकता है। करनाली प्रदेश के 5 जिले 3 दिनों से संचार विहीन है। भारी हिमपात के कारण कालीकोट की भरता में रहे टावर में सोलर का ठीक से काम न करने के कारण कालीकोट, हुमला, डोलपा, मुगू और जुमला में टेलीफोन सेवा के अवरुद्ध होने की जानकारी नेपाल टेलीकॉम सुर्खेत के प्रमुख नवराज खतिवाड़ा ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि मरम्मत का काम जारी है और जल्द ही सेवा सुचारू हो जाएगी। पेयजल मंत्री बीना मगर ने कहा कि पीने का पानी और सरसफाई दोनों ही मौलिक हक से संबंधित है, इसलिए इन दोनों क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। आज झापा की कांकरभिटा और दुहागढ़ी में विष्टाजन्य गंदगी प्रशोधन केंद्र का उद्घाटन करते हुए मंत्री मगर ने बताया कि तराई क्षेत्र में मौजूदा आर्सेनिक आदि समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल की जा रही है। मेची नगर 7 की कांकरभिटा में सुचारू होने वाले इस प्रशोधन केंद्र के द्वारा दैनिक 12 घन मीटर और दुहागढ़ी को केंद्र द्वारा 27 घन मीटर विष्ठाजन्य गंदगी का प्रशोधन कर खेतों में प्रयोग करने के लिए प्रंगारी खाद बनाया जाएगा। बता दें कि इस परियोजना के लिए दात्री संस्था बिल एंड मेलिना गेट्स ने 14,65,58,000 रूपये निवेश किए हैं। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय ने कहा कि गन्ने किसानों की बकाया रकम का भुगतान करने की समस्या का स्थायी रूप से समाधान करने के लिए सरकार ने मंत्रालय में समिति का गठन किया है और अध्ययन को भी आगे बढ़ाया है। मंत्रालय में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रालय के प्रवक्ता दिनेश भट्टराय ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गन्ने की किसानों की बकाया रकम न देने वाले चीनी मिलों में से अन्नपूर्णा, इंदिरा और लुम्बिनी के वित्तीय कारोबार पर रोक लगाकर कार्रवाई की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी केनवरा के एयरपोर्ट के पास स्थित जंगलों में आग लगने के बाद शहर के कुछ हिस्से को खाली कराया गया है। सड़कों पर आवागमन ठप हो गया है। अधिकारियों ने लोगों से इलाका खाली करने या फिर आग की चपेट में आए उपनगरों से दूर रहने को कहा है। देश में पिछले दिनों हुई बारिश और तापमान में आई कमी से अग्निशमन कर्मचारियों को जंगलों में लगी आग को काबू करने में कुछ सफलता मिली थी, लेकिन तेज हवा चलने और तापमान बढ़ने से आज फिर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों में राजधानी के उपनगरीय इलाकों के ऊपर धुएं का गुबार दिख रहा है। हाल के दिनों में केनवरा, सिडनी और मेलबर्न विश्व में सबसे खराब हवा की गुणवत्ता वाले शहरों में शीर्ष पर रहे हैं। गत सितंबर में लगी आग की चपेट में अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। 2005 से घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में मिखाइल मिशुस्तिनी की नियुक्ति के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी नई कैबिनेट का गठन किया है। इसमें उप प्रधानमंत्रियों की संख्या 10 से घटाकर 9 कर दी गई है, जिनमें 5 नए चेहरे हैं। राष्ट्रपति भवन की अधिसूचना के अनुसार नई कैबिनेट में पुतिन के सहयोगी आंद्रे बेलोशोव को शामिल करते हुए उन्हें प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया है, जबकि अभी तक इस पद को संभाल रहे एंटोन सिलुआनोव को वित्त मंत्रालय का भार सौंपा गया है। अंत में इस समाचार के प्रमुख शीर्षक एक बार फिर। कल होने जा रहे राष्ट्रीय सभा चुनाव की सभी तैयारियां हो चुकी है, निर्वाचन आयोग द्वारा जानकारी। गन्ना किसानों की बकाया रकम भुगतान न करने वाले चीनी मिलों पर सरकार द्वारा कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू। करनाली प्रदेश के 5 जिले 3 दिनों से संचार विहीन और ऑस्ट्रेलिया में फिर से भड़की आग। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए दीजिए आज्ञा। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।